डॉक्टर जॉन ओसवाल्ट, यशाया 17:18 ईसा 36-37। 2024 जॉन ओसवाल्ट और टेड हिल्डेब्रांट। यह यशाया की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर जॉन ओसवाल्ट हैं। यह सत्र संख्या 18 यशाया अध्याय 36 और 37 है। ठीक है, चलो एक साथ प्रार्थना करें। पिता, हम आपके साथ आपकी उपस्थिति में कितना आनंदित हैं। अंततः यही सब कुछ है। यदि आप हमारे साथ नहीं हैं, तो हमारा अस्तित्व नहीं है। तुम ही मेरी जिंदगी हो, तुम आशा हो, तुम सत्य हो, आप सब कुछ हैं, सब कुछ। और हम गवाही देते हैं कि हम अस्तित्व में हैं, क्योंकि आप हमारे बारे में सोचते हैं। आप लेखक हैं और हम पात्र हैं। आप कहानी बता रहे हैं और हम कहानी का हिस्सा हैं, और हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपका धन्यवाद कि मसीह के द्वारा हमें जीवन, प्रचुर जीवन, अभी और सदैव मिलता है। जब हम अपनी विरासत का उपयोग नहीं कर पाते, जब हम दुबले पतले, अल्प खाली जीवन जीते हैं, जैसे कि आप अस्तित्व में ही नहीं थे, तो हमें क्षमा करें। हमारी मदद करो प्रभु। हमें यह याद रखने में सहायता करें कि आप कौन हैं और आपके संसाधन क्या हैं, तथा जो कुछ आप हमें उपलब्ध कराते हैं उसका पूर्ण उपयोग करने में हमारी सहायता करें। धन्यवाद। एक बार फिर हम आपके वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, और एक बार फिर हम आपसे विनती करते हैं, पवित्र आत्मा आए और अपने वचन को हमारे दिलों पर लागू करें। आपके नाम पर हम प्रार्थना करते हैं। तथास्तु। हमने किताब पर आधे से अधिक काम किया है। बधाई हो। हमने अध्याय 1 से 6 तक दासत्व के आह्वान को देखा है। बच्चा असामान्य रूप से कामपता हुआ प्रतीत होता है। 1 से 5 में हमें दिक्कत हुई। राष्ट्र को शुद्ध पवित्र माध्यम कहा जाता है, जिसके माध्यम से भगवान राष्ट्रों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वास्तव में वे विद्रोही और टूटे हुए हैं, पृथ्वी पर हर ऊंची और श्रेष्ठ चीज से आसक्त हैं। और इसलिए मैंने सुझाव दिया कि यशाया उस समस्या के समाधान के रूप में अपना निर्णय दे। यदि अशुद्ध होठों वाले राष्ट्र को अशुद्ध होठों वाले व्यक्ति के समान अनुभव होता, तो उनके पास राष्ट्रों को घोषित करने के लिए एक संदेश होता, जैसा कि उसके पास उन्हें घोषित करने के लिए एक संदेश था। फिर मैंने सुझाव दिया कि 7 से 29 भरोसा है। भगवान पर विश्वास रखो। सेवकाई के आधार पर भरोसा रखें। सेवकत्व के लिए बुलाओ। सेवकाई के आधार पर भरोसा रखें। 7 से 12 में हमने कोई भरोसा और उसके निहितार्थ नहीं देखे। फिर 13 से 35 की उम्र में हमने भरोसे का पाठ देखा। राष्ट्रों पर भरोसा मत करो। मानवीय शक्ति और उच्चता पर भरोसा मत करो, बल्कि भगवान पर भरोसा करो। अब आज रात हम फिर से तस्वीर के दूसरे पहलू को देखना शुरू करने के लिए तैयार हैं। 36 से 29। और मैं उन 4 अध्यायों को जो शीर्षक दूंगा वह है विश्वास। हाँ, लेकिन ठीक है, मैं आपसे तस्वीर के दूसरे पहलू को देखने के लिए कहता हूँ। 36:2 और 7:3 देखो, आपने वहां क्या खोजा? यह बिल्कुल वही स्थान है, वह स्थान जहां यशायाह ने संभवतः 735 में राजा आहाज को परमेश्वर पर भरोसा रखने की चुनौती दी थी। अब 35 साल बाद 701 ईसा पूर्व में असीरियन अधिकारी उसी स्थान पर खड़ा है। अब उसे हमें कुछ बताना चाहिए। इससे हमें यह पता चलना चाहिए कि वास्तव में ये दोनों खंड एक लिफाफा हैं। आहाज, आप भगवान पर भरोसा कर सकते हैं। ओह, मैं उसकी परीक्षा नहीं लेना चाहूंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, जैसा कि मैंने उस समय कहा था, धर्मप्रायणता अक्सर अविश्वास का एक अद्भुत बहाना है। नहीं, मैं भगवान को ऐसी जगह नहीं रखूंगा जहां उसे खुद को साबित करना पड़े। मैं स्वयं ईश्वर को ऐसे स्थान पर नहीं रखूंगा जहां ईश्वर को स्वयं को साबित करना पड़े। निचली पंक्ति यही है। और इसलिए यशायाह को आहाज को बताना पड़ा कि तुम परमेश्वर के स्थान पर जो भी भरोसा करते हो, और निःसंदेह उसने अपना भरोसा अश्शूर पर रखा था, जो कुछ भी तुम परमेश्वर के स्थान पर भरोसा करते हो वह एक दिन तुम पर और यह अश्शूर जिस पर तुम अब भरोसा कर रहे हो एक दिन आ जाएगा। एक दिन इस भूमि पर नाक तक बाढ़ आने वाली है। और यही हम 36वें अध्याय के साथ हैं। असीरिया आ गया है, वे तट से नीचे आ गए हैं और वे यहूदा के दक्षिण पश्चिम में फिलिस्तिया में पहुंच गए हैं। मुझे लगता है कि मानचित्र बनाने में मेरी हालत खराब होती जा रही है। याद रखें, यहूदा यहां इस केंद्रीय पर्वतमाला पर स्थित है जो इस तरह और उस तरह से चलती है, और तट का मार्ग गलील से होते हुए यिज्रेल घाटी के पार मगिद्दो के दर्रे की इस चोटी से होकर और फिर तट से नीचे उतरा। पलिश्ती नगर यही स्थित हैं। उनमें से पांच, और कई मायनों में वे असीरिया के अंतिम लक्ष्य मिस्र के लिए आखिरी बाधा हैं। लेकिन जाहिर है अश्शूरी लोग यहूदा को यहां अपने पिछले हिस्से में नहीं छोड़ सकते, अन्यथा यहूदी लोग आपूर्ति लाइनों पर हमला करने और कटौती करने में सक्षम होंगे। वह नहीं हो सकता। इसलिए जब अश्शूरी पलिश्तियों का सफाया कर रहे हैं तो वे यहूदा का भी सफाया कर रहे हैं, और बाइबल हमें बताती है कि उन्होंने यहूदा में 36 किले ले लिए थे। केवल दो ही बचे हैं। एक यहां यरूशलेम तक सड़क पर है और वह लाकीश या लाकीश शहर है, और अश्शूरी लोग उसी समय लाकीश को घेर रहे हैं। यदि आप इज़राइल गए हैं तो आप जानते होंगे कि यह एक बड़ा शहर था। यह वास्तव में संभवतः यरूशलेम से थोड़ा बड़ा था। अच्छी तरह से दृढ़ और जाहिर है कि अगर उसे यरूशलेम लेना है तो उसे यह लेना ही होगा। इस प्रकार यहूदा में 48 किले हैं। उसने 46 ले लिया है। 47 बजने को है। वह अपने लिए कुछ पैसे बचाना चाहता है। घेराबंदी बेहद महंगी थी। वर्ष भर सेना को तैनात रखना। आमतौर पर ये सेनाएं वसंत और गर्मियों के दौरान और शरद ऋतु की शुरुआत में हमला करती हैं और फिर केवल गैरिसन को पीछे छोड़कर वापस चली जाती हैं। लेकिन आप घेराबंदी करके ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें वह सेना साल भर वहीं छोड़नी पड़ती थी। और सैनिक खाते हैं। तो आइए अपने लिए कुछ पैसे बचाएं। आइए फील्ड कमांडरों को भेजें। चलिए फील्ड कमांडर को भेजते हैं। तीसरा प्रभारी रबशाका, आइए उसे वहां भेजें और इन बेचारे लोगों को आत्मसमर्पण करने के लिए मनाएं। हमारा ढेर सारा पैसा और समय बचाएं, और हम उस तक पहुंच सकते हैं जिसकी हम वास्तव में तलाश कर रहे हैं। यहूदा, उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम वास्तव में चाहते हैं। हमें बस यह सुनिश्चित करने के लिए उन्हें ले जाना है कि जब हम अपने अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हों तो हमारे पीछे कोई न हो। तो रबशका के भाषण में विश्वास के लिए शब्द कितनी बार आते हैं? क्या आपने उन्हें गिना? 9? हाँ, कुछ निहित हैं। ऐसे 6 शब्द हैं जो विश्वास के लिए स्पष्ट रूप से आते हैं। आपके कुछ अनुवाद अन्य प्रकार की चीजों पर निर्भर हो सकते हैं, और यदि आपको सभी निहितार्थ मिल गए तो आपको उनमें से 9 मिल गए। तो क्या इस बारे में कोई प्रश्न है कि यहां मुद्दा क्या है? मामला भरोसे का है। तो सबसे पहले वह कौन कहता है कि आप मूर्खतापूर्वक भरोसा कर रहे हैं? ठीक है, मिस्र और उस रक्षा के परिणामस्वरूप आपकी अपनी शक्ति। और वह मिस्र के बारे में क्या कहता है? हाँ हाँ, नील नदी घाटी पर फिर से मिस्र, वहां बहुत सारी नरकटें हैं, बड़े नरकट, बड़े मोटे नरकट, लेकिन एक कोई बहुत अच्छी चलने वाली छड़ी नहीं है, क्योंकि सरकंडा टूटकर बिखर जाएगा। तो आप इस चीज पर झुक रहे हैं और यह टुकड़े टुकड़े हो जाता है और आपकी बगल में छुरा घोंप देता है। वह मिस्र है। तो यदि आप मिस्र पर भरोसा कर रहे हैं, यदि आप अपनी रणनीति पर भरोसा कर रहे हैं। श्लोक 5। क्या आपको लगता है कि केवल शब्द ही युद्ध की रणनीति और शक्ति हैं? नहीं, इससे आपका कोई भला नहीं होने वाला। क्या आप मिस्र पर भरोसा कर रहे हैं? वह टूटा हुआ सरकंडा जो उस पर टेक लगाए उसके हाथ में छेद कर देगा। अगला भरोसा किसका वह उपहास करता है? भगवान पर विश्वास रखो। अब वह ऐसा क्यों कहता है कि इससे उन्हें असफलता मिलेगी? वह सोचता है कि वह ईश्वर को जानता है। हिजकियाह ने ऐसा क्या किया जिसे वह एक समस्या मानता है? उसने यहोवा के सभी स्थानीय चर्चों को ध्वस्त कर दिया। यह वही है जो उसे करना चाहिए था। अब आपको याद है, समस्या यह है कि देवताओं की पूजा ऊंचे स्थानों पर की जाती थी, पहाड़ी चोटियां। ऐसा वह हर ऊंची पहाड़ी पर और हर हरे पेड़ के नीचे कहता है। यहीं पर देवताओं की पूजा की जाती थी, और इसलिए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि लोगों को जो करने का प्रलोभन दिया गया वह था ईश्वर को दूर ले जाना और उसके स्थान पर ईश्वर को प्रतिस्थापित करना। अब आपको याद है, क्या कोई सोच सकता है कि इसमें समस्या क्या है? यदि आप हर पहाड़ी की चोटी पर भगवान की पूजा करते हैं तो इसमें समस्या क्या है? मेरा मतलब है कि यह भगवान है, वहां संभावित समस्या क्या है? प्रतियोगिता। बिल्कुल से ठीक है, ठीक है। जॉन वे विल्मोर के यहोवा की पूजा करते हैं, लेकिन मैं निकोलस विले के यहोवा की पूजा करता हूं। होता यह है कि आप ईश्वर को स्थान के आधार पर विभाजित करना शुरू कर देते हैं। तो भले ही आपने देवताओं के स्थान पर भगवान को रखकर देवताओं से छुटकारा पा लिया है, फिर भी आपके पास एक समस्या है। और इस प्रकार सुलेमान से लेकर अब तक, और शायद यह सुलेमान से पहले भी था, लेकिन फिर भी व्यवस्था विवरण ने जो कहा था उसे करने का कुछ प्रयास किया गया था। और व्यवस्था विवरण कहता है कि तुम एक ही स्थान पर परमेश्वर की आराधना करो। ऐसा लगता है कि एली और ईकाबोर्ड और विनाश के समय तक वह स्थान जहां वे पूजा करते थे वह शीलो था। शीलो एप्रैम के क्षेत्र में यरूशलेम से लगभग 15 मील उत्तर में है। हन्ना वहीं गई थी, यहीं पर सैमुअल ने सेवा की थी। लेकिन ऐसा लगता है मानो उस मोज़ेक तंबू को पलिश्तियों ने जला दिया था। आपको याद होगा कि पलिश्ती आ रहे हैं और हर कोई मौत से डरा हुआ है, इसलिए उन्होंने अपने पसंदीदा खरगोश के पैर से वाचा का संदूक प्राप्त करने और इसे बाहर निकालने और युद्ध के मैदान में इसका उपयोग करने का फैसला किया है। वह निश्चय ही पलिश्तियों को डरा देगा। खैर, ऐसा हुआ। उन्हें वैसे ही डरा दिया जैसे जॉर्जिया को डराया, केंटुकी ने जॉर्जिया को डरा दिया। वास्तव में खेलने के लिए उन्हें काफी डरा दिया, और वही हुआ। पलिश्तियों ने उन्हें हरा दिया और संदूक पर कब्जा कर लिया। भगवान का यह दिखाने का तरीका कि मैं खरगोश का पैर नहीं हूं, और शमूएल इसका उल्लेख नहीं करता है, लेकिन यिर्मयाह करता है। यिर्मयाह कहता है कि मैं यरूशलेम में इस मंदिर को वैसे ही जला सकता हूं जैसे मैंने शीलो में तंबू को जला दिया था। और ऐसा लगता है जैसे आपको लगभग 75 वर्षों की अराजकता का सामना करना पड़ा है, जहां लोग हर जगह तंबू बना रहे हैं। आप जानते हैं कि यह उनका अवसर है। मोज़ेक तंबू चला गया है। चलिए थोड़ा कैशियर बनाते हैं। आइए हमारा अपना स्थानीय तंबू हो। तो तब से ऐसा लग रहा है जैसे ऊंचे स्थानों वाला यह व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा है और अंतः हिचकिया कहता है, अरे तुम्हें पता है क्या? बाइबल कहती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए हिचकियाह ने इन सभी यावववादी ऊंचे स्थानों से छुटकारा पा लिया है। ये ऊंचे स्थान वे थे जहां यहोवा के किसी न किसी रूप की पूजा की जाती थी। तो रबशा के इस बारे में क्या कहते हैं? यहोवा उससे अप्रसन्न है। मेरा मतलब है यार, हिचकियाह ने सभी स्थानीय चर्चों को नष्ट कर दिया। क्या आप यहोवा पर भरोसा रखेंगे? यहोवा तुम पर क्रोधित है। अब फिर से मैं असीरियन विदेश कार्यालय द्वारा यहाँ किए गए पृष्ठभूमि कार्य से बहुत प्रभावित हूँ। वह बहुत अच्छी तरह से तैयार है, लेकिन वह बाइबल धर्म को नहीं समझता है। यदि किसी ने अश्शूर में ऐसा किया होता और देवताओं की पूजा करने के लिए इन सभी स्थानीय स्थानों को नष्ट कर दिया होता, तो जाहिर तौर पर देवता क्रोधित होते, तो यहोवा भी क्रोधित होगा। वह नहीं समझता। ठीक है, चलो यहीं आगे बढ़ते हैं। तो वह श्लोक 8 और 9 में क्या करने की पेशकश करता है? वह उसे घोड़े देने की पेशकश करता है। अब याद रखें, इस बिंदु पर घोड़ा अभी भी गुप्त हथियार है। इस बिंदु पर चीजें बस बदल रही हैं। यह घोड़ा और रथ था जहां आपको एक चालक मिला है, और यदि आप असीरियन हैं तो यह 3 सदस्यीय रथ है, लंबी दूरी की तोपखाने के लिए एक धनुषधारी है और थोड़ी दूरी के लिए एक भाला चलाने वाला है। लेकिन चीजें घुड़सवार सेना में बदल रही थीं। वे घोड़ों की सवारी करना और उनसे लड़ना सीख रहे थे और इससे उन्हें बहुत अधिक गतिशीलता मिली। तो वह कहता है कि तुम्हें पता है, अरे अगर तुम्हें कोई समस्या है, तुम्हारे पास पर्याप्त घोड़े नहीं हैं, तो मैं तुम्हें घोड़े दूंगा। यह उस गोल्फर की तरह है जो कहता है, अरे मैं तुम्हें 25 स्ट्रोक दूंगा और फिर भी तुम्हें हरा दूंगा। वह यही कह रहा है, मैं तुम्हें 2000 घोड़े दूंगा और फिर भी हम तुम्हें कोड़े मारेंगे, यदि आप सैन्य शक्ति पर भरोसा कर रहे हैं। तो आप अपनी रणनीति पर भरोसा नहीं कर सकते, आप मिस्र पर भरोसा नहीं कर सकते, आप यहोवा पर भरोसा नहीं कर सकते, आप अपनी सैन्य शक्ति पर भरोसा नहीं कर सकते। और अंत में देखें कि वह पद 10 में क्या कहता है। यहोवा, यहोवा ने हमें भेजा। फिर मुझे लग रहा है कि किसी ने अपना होमवर्क कर लिया है। आप जानते हैं, अरे आप जानते हैं कि उनके भविष्यवक्ता क्या कहते हैं? उनके भविष्यवक्ता कहते हैं कि ईश्वर उन्हें भेजता है। यह पागलपन है, लेकिन अगर वे इस पर विश्वास करते हैं तो यहोवा ने हमें भेजा है। तो राजदूत कहते हैं, अरे आप हमसे अरामी भाषा में बात क्यों नहीं करते? अब इस समय अरामाइक शब्द का प्रयोग लिंगुआ फ्रैंका, व्यापार की भाषा के रूप में किया जाता है। पूरे असीरियन साम्राज्य में अरामी भाषा, जो सीरिया दमिश्क की भाषा थी, और संभवतः इसके इतने महत्वपूर्ण होने का कारण यह है कि यह एक प्रकार का मानक बन गया है। यह साम्राज्य के मध्य में था। आपको यहाँ बेबीलोन मिल गया है, आपको यहाँ दमिश्क मिल गया है, आपको वहाँ मिस्र मिल गया है, और इसलिए देखो बस हमसे कूटनीतिक भाषा में बात करो। और वह क्या कहता है? बिल्कुल नहीं। मैंने हिब्रू की शिक्षा ली और मैं यहाँ दीवार पर बैठे इन लोगों से बात करने जा रहा हूँ जो हमारी बात सुनेंगे। और निःसंदेह भाषा बहुत स्थूल है ना? ये लोग जो अपना गोबर खाने और अपना मूत्र पीने के लिए अभिशप्त हैं, उन्हें यह जानने की जरूरत है कि उन पर क्या बीत रही है। वह घेराबंदी है। मुझे नहीं लगता कि हमारे पास घेराबंदी की भयावहता को समझने का कोई तरीका है। चार दीवारी वाले शहर शायद 25 या 30 हजार लोगों को आराम से रखने में सक्षम थे और आपके पास अन्य 50, 60, 70 हजार लोग बाहर तंबू में रह रहे हैं और यहाँ दुश्मन आता है। वे 50 या 60 या 70 हजार लोग कहा जाते हैं उन दीवारों के अंदर। इसलिए बहुत ही कम समय में दीवारों के अंदर जीवन असहनीय हो गया। और अगर घेराबंदी 2 या 2.5 साल तक चली तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि यह कैसा था। तो वह कह रहे हैं, इन लोगों को जानने की जरूरत है। मैं उनसे हिब्रू में बात करने जा रहा हूं। फिर ये असीरियन, वे बहुत गहन हैं, कुछ हद तक जर्मनों की तरह। तो ध्यान दीजिए कि वह हिजकियाह को कभी नहीं कहता, वह उसे कभी राजा हिजकियाह नहीं कहता। श्लोक 13 को देखो, महान राजा अश्शूर के राजा के शब्दों को सुनो। राजा यूं कहता है, हिजकियाह तुम्हें धोखा न दे। राजा हिजकियाह नहीं, वह गुंडा हिजकियाह, उसे तुम्हें धोखा न देने दे। दोस्तों, हम यहां राजा के बारे में बात कर रहे हैं। यह जो है वह मनोवैज्ञानिक युद्ध है। तो श्लोक 15 में उन्हें किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए? भगवान, उन्हें हिजकियाह की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यहोवा हमें बचाएगा, क्योंकि वह नहीं करेगा। इसे मत सुनो। श्लोक 16 और 17 के अनुसार आपको किस पर भरोसा करना चाहिए? हम असीरियन, मेरा मतलब है, अरे हम तुम्हें इससे भी अच्छी जगह पर ले जाएंगे। तुम सबकी अपनी अपनी लता और अपना अंजीर का पेड़ होगा। तुम अपने ही हौद से पानी पियोगे और मैं तुम्हें इस पथरीली जगह से भी कहीं अधिक अच्छी भूमि पर ले चलने जा रहा हूं। मुझ पर भरोसा करें। क्या आप इस आदमी से इस्तेमाल की हुई कार खरीदेंगे? अब हम यहां अंतिम पंक्ति पर आते हैं, पद 18। प्रभु उन्हें छुड़ाने में क्यों असमर्थ होंगे? कोई अन्य भगवान नहीं है और यहोवा सिर्फ देवताओं में से एक है। यहां अंतिम पंक्ति है, नहीं यहोवा ने उन्हें नहीं भेजा। नहीं, यहोवा इसलिए नाराज नहीं है क्योंकि उन्होंने सभी स्थानीय चर्चों को नष्ट कर दिया है। यहोवा असहाय है, वह अंतिम बात है। अब मैं तुम्हें जानना चाहता हूं कि उन अन्य देवताओं को किसने नष्ट किया। यह क्या कह रहा है? श्लोक 19। क्या उन्होंने सामरिया को छुड़ाया है? क्या सामरिया? क्या सामरिया? क्या सामरिया? मेरे हाथ से बाहर। मेरा कौन है? अश्शूर का राजा। यह असीरियन देवताओं और इसराइली ईश्वर के बीच द्वंद्व नहीं है। यह असीरियन सम्राट और आपके देवता के बीच द्वंद्व है। अश्शूर के देवता इस चर्चा में कभी शामिल नहीं होते। यह महान राजा के बारे में है और महान राजा ने सभी अन्य देवताओं को नष्ट कर दिया है और वह आपके भगवान को भी नष्ट करने जा रहा है। अब फिर उसके पास ऐसा कहने का थोड़ा सा कारण था। मेरा मतलब है, सामरिया, उनके पास देवता थे, है ना? सुनहरे बैल। उन देवताओं ने सामरिया का क्या भला किया? कोई नहीं। फिर उसने इसका पता नहीं लगाया। यरूशलेम का देवता सोने का बैल नहीं है। यरूशलेम के देवता ब्रह्मांड के निर्माता हैं। लेकिन एक आदमी उसके खिलाफ खड़ा हो सकता है और उसे नीचे गिरा सकता है। इन देशों के सब देवताओं में से किसने अपना देश मेरे हाथ से बचाया है कि यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाए? यह यहां की निचली पंक्ति है। यहां पूरे रास्ते हम मानव आत्मोत्थान के बारे में बात करते रहे हैं। यह अध्याय 2 और यहां तक कि अध्याय 1 बनाम यहोवा के उत्कर्ष तक जाता है। इसलिए मैं फिर कहता हूं, यह कोई तर्कसंगत तर्क नहीं है। वह बस उन्हें सामान देकर परेशान कर रहा है। अपनी ही रणनीति पर भरोसा मत करो, मिस्र पर भरोसा मत करो, यहोवा पर भरोसा मत करो। क्यों? क्योंकि यहोवा ने मुझे भेजा है। क्यों? क्योंकि यहोवा तुम पर क्रोधित है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम ताकतवर हो तो हम तुम्हें घोड़े देंगे, और अंत में यहोवा आपकी सहायता नहीं कर सकता, और हम बहुत अच्छे लोग हैं। बस हम पर भरोसा रखें। यह कोई तर्कसंगत तर्क नहीं है जो सही ढंग से चल रहा हो। वह बस उन्हें डांट रहा है। अब मैं यहां प्रश्न पूछता हूं, 36:11-22 संख्या 2। और मैंने कहा कि पीछे श्लोक 10 को देखो, यही वह कहता है कि यहोवा ने हमें भेजा है। अब यहां वह कहता है कि यहोवा असहाय है। इससे हमें पता चलता है कि उन्होंने वास्तव में क्या सोचा था। तो फिर वह श्लोक 10 को इस विषय में क्यों लाया? उसने क्यों कहा, भला यहोवा तुझ पर क्रोधित है? और जब शत्रु हमें प्रलोभित कर रहा हो तो यह हमें उसकी रणनीति के बारे में क्या बताता है? मुझे ऐसा लगता है कि उम्मीद है कि आप उन्हें खाना खिलाएंगे ताकि वह उन पर शारीरिक हमला कर सके, क्योंकि वे सभी डीकन हैं। और यही वह यहां कर रहा है। यह ऐसा है जैसे वह उन्हें यह कहकर ईश्वर में विश्वास न करने के लिए मजबूर कर सकता है कि ईश्वर अच्छा है, लेकिन वह वास्तव में क्या करने जा रहा है? उसने उन सभी को भ्रमित कर दिया है और वह उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से हराने की कोशिश कर रहा है। खैर, इसमें शामिल होने के लिए वह यहोवा के बारे में अपना ज्ञान दिखा रहा है, वे क्या मानते हैं, और वह इसे उनके खिलाफ कर देता है। और इस हद तक कि वह इसका उपयोग भी करता है। और मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, क्या कोई अन्य शत्रु है जिसे हम रिकॉर्ड में जानते हैं जो वास्तव में यहूदा के खिलाफ यहोवा नाम का उपयोग करता है? नहीं, वह वास्तव में उनकी भाषा में नाम का उपयोग करता है और यह विनाशकारी है। हाँ, 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 और बिल्कुल यही है। दुश्मन हमारा संतुलन बिगाड़ने की कोशिश करता है। वह हमें भ्रमित करता है। वह ऐसी चीजों का उपयोग करता है जो बहुत अच्छी लगती हैं यदि आपने वास्तव में इसके बारे में नहीं सोचा है। और यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसने यीशु के साथ किया था। इसने ईव के साथ काम किया। हाँ, इसने ईव के साथ काम किया। लेकिन आप जानते हैं, वह यीशु के साथ धर्मग्रंथ का उपयोग करता है। ओह, तुम्हें शास्त्रार्थ करना है? मैं शास्त्रार्थ कर सकता हूं। तो तभी हमने उसे हमारे साथ उपद्रव शुरू करने की अनुमति दी। वह हर समय हमारा संतुलन बिगाड़ने और हमें नीचे गिराने की कोशिश करेगा। और वह क्या कहता है, इसीलिए हमारे लिए हर समय यीशु की बाहों में रहना इतना आवश्यक है। उसकी सुरक्षा से बाहर निकलो। और यह महान राजा के विरुद्ध हिजकियाह है। हाँ, और वह हिजकियाह का भी उपयोग कर रहा है। हाँ, हाँ, तो यही वह समय है जब वेजेज चलाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, 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 आप इसे देखें या मैं देखूं, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इसके लिए कितनी तैयारी की गई होगी? बिल्कुल, बिल्कुल, उनके पास विभिन्न क्षेत्रों में सभी प्रकार के सलाहकार रहे होंगे। जी श्रीमान, जी श्रीमान, और इस आदमी को एक स्क्रिप्ट लिखने के लिए। हाँ, हाँ, और उसने हिब्रू सीख ली थी। मेरा मतलब है, यह असीरिया है। कौन परवाह करता है कि यह गंदा छोटा झुंड कौन सी भाषा बोलता है? अगर इससे हमें अपनी बात मनवाने में मदद मिलेगी तो हम काम करेंगे। हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि दूसरा पक्ष अपने होमवर्क में हमसे कहीं बेहतर होता है। हम एक तरह से भगवान पर निर्भर हैं, इसलिए हम अपना होमवर्क नहीं करते हैं। दूसरी ओर वे करते हैं। वे करते हैं। आप इसे बाइबल अध्ययन में बहुत बार देखते हैं कि जो लोग किसी बात पर विश्वास नहीं करते, उन्होंने अपना होमवर्क कर लिया है। लेकिन हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, असीरियन विदेश कार्यालय कुछ और रहा होगा के संदर्भ में, यदि उन्होंने यह सब के लिए किया, और मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा किया। हाँ, वह भविष्यवक्ताओं को जानता था और उनसे कहता था कि वे यीशु पर विश्वास न करें। बिल्कुल, इसलिए वह भविष्यवक्ताओं ने जो कहा था उसे मान रहा था। हाँ हाँ हाँ, और वह इतना जानता था कि कुछ भविष्यवक्ताओं ने कहा था कि प्रभु इन शत्रु राष्ट्रों को लाएगा। इसे नहीं समझता, लेकिन वह इसे जानता है। उसने अपना सबक सीख लिया है, भले ही उसे पाठ समझ में न आए। ठीक है, तो दूतावास जाता है और मैं आपसे अध्याय 22 पर नजर डालने के लिए कहता हूं। अध्याय 22 में शेवना घर का कार्यभार संभाल रही थी और यशायाह ने कहा था, क्योंकि वह वहां अपनी कब्र पर काम कर रहा है, राष्ट्र की गिरी हुई हालत को देखने के बजाय भगवान उसे नीचे ले जा रहे थे और एलियाकिम को उसके स्थान पर रख रहे थे। अच्छा, यहां तो ऐसा ही हुआ है ना? श्लोक 22। तब हिल्कियाह का पुत्र एलियाकीम राज परिवार पर नियुक्त हुआ। जैसा कि मैंने आपसे कहा, मुझे लगता है कि इसका मतलब प्रधानमंत्री है, यह बटलर नहीं है। हिजकियाह ने अपने नौकर को इस आदमी से बात करने के लिए बाहर नहीं भेजा। ये प्रधानमंत्री हैं। दिलचस्प बात यह है कि शेवना अभी भी तस्वीर में है ना? वह अब सचिव हैं। उन्हें पदावनत कर दिया गया है। ठीक है, तो अध्याय 37। हिजकियाह क्या करता है? वह स्वयं को नम्र बनाता है। नंबर एक, उसने अपने कपड़े फाड़ दिए। उसने अपने आप को टाट से ढक लिया। वह आगे क्या करता है? वह प्रभु के घर में जाता है। और वह आगे क्या करता है? उसने पैगंबर को संदेश भेजा। हाँ हाँ, खुद को दीन किया, भगवान की उपस्थिति में चला गया, भगवान के आदमी के साथ परामर्श किया। जब आप मुसीबत में हो तो उस नुस्खे को हराना कठिन होता है। वह पश्चाताप जानता था। वह जानता था कि कहाँ जाना है। वह जानता था कि किससे बात करनी है। पद 3 में हिजकियाह यूं कहता है, यह संकट, डांट और अपमान का दिन है। बच्चे जन्म के करीब आ गए हैं और उन्हें जन्म देने की कोई ताकत नहीं है। मैंने आपसे कई बार कहा है कि यशायाह एक सिंफनी है। ये रूपांकन प्रकट होते हैं और लुप्त हो जाते हैं, और फिर वो फिर से थोड़े अलग रूप में सामने आते हैं। और जन्म के बिंदु पर आने का यह विचार उन विषयों में से एक है। हम इसे यहां 2 या 3 बार प्रदर्शित होते हुए देखेंगे। मुझे लगता है कि मैं खुद को पृष्ठभूमि में कहीं सुन रहा हूं। हम जन्म देने के बिंदु पर आ गए हैं और हमारे पास इसे करने की कोई ताकत नहीं है। निःसंदेह उस दिन यह दुखद रूप से बार बार होता था। एक महिला शायद जिसने 30 या 40 घंटे तक श्रम किया हो, और वह बच्चे को जन्म देने में असमर्थ होकर बस मर जाती है। हम असहाय हैं। हम उस बिंदु पर आ गए हैं जहां कुछ करना होगा। यहां मुक्ति होनी ही है। बच्चे को जन्म देना है और हम यह नहीं कर सकते। यह आने के लिए बहुत अच्छी जगह है। जब तक आप सोचते हैं कि आप खुद को बचा सकते हैं, आप नहीं बचा सकते। यह हो सकता है कि प्रभु आपका ईश्वर हो। अब मुझे लगता है कि यह दिलचस्प है। यह नहीं कहता कि यहोवा मेरा परमेश्वर, यहोवा तेरा परमेश्वर। अध्यायक्त होने से पहले वह यहाँ बेहतर प्रदर्शन करने जा रहा है। मुझे यह कुछ दिलचस्प लगता है। यशाया, क्या आप कृपया अपने भगवान से बात करेंगे और देखो क्या तुम हमारे लिए कुछ कर सकते हो। बेहतर होगा कि वह आपका भगवान बने, न कि सिर्फ किसी और का भगवान, जिसे उसके स्वामी अश्शूर के राजा ने जीवित परमेश्वर का अपमान करने के लिए भेजा है। अब यह वाक्यांश बाइबल में उतनी बार नहीं आता है, लेकिन जब ऐसा होता है तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन होता है। आप देखिए, देवता निर्जीव हैं, क्योंकि ये इंसान के हाथों से बने होते हैं। हमने खुद को बचाने के लिए जो कुछ भी किया है वह हमें विफल कर देगा, क्योंकि हम इसे जीवन नहीं दे सकते। केवल मैं हूं के पास ही देने के लिए जीवन है। ब्रह्मांड में हर दूसरा जीवन व्युत्पन्न है। उनके जीवन से व्युत्पन्न एकमात्र जीवन जो हम दे सकते हैं वह जीवन है जो हमने उससे प्राप्त किया है। तो जीवित परमेश्वर वह परमेश्वर है जो सुनता है। उनके कान तो हैं, परंतु वे कुछ सुन नहीं सकते। भगवान जो देखता है। उनके पास आंखें तो हैं, परंतु वे कुछ देख नहीं सकते। भगवान जो कार्य करता है। उनके हाथ तो हैं, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते। बाइबल के महान विरोधाभासों में से एक। उसके कान नहीं हैं। ओह, लेकिन उसकी आंखें नहीं हैं। ओह, लेकिन वह देखता है। उसके कोई हाथ नहीं है। ओह, लेकिन वह कार्य करता है। और इसलिए हिजकियाह को यह मिल गया है। यहाँ क्या मामला है? यह मनुष्य सोचता है कि वह जीवित परमेश्वर से मुकाबला कर सकता है। बिल्कुल नहीं। तो यशायाह कहता है, डरो मत। और मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा सा प्रतिशोध का मजाक उड़ाया गया है। जो वचन तूने सुना है उससे मत डर, जिससे अश्शूर के राजा के जवानों ने मेरी निंदा की है। लड़के, मुझे नहीं लगता कि रबशाके को लड़का कहलाना पसंद होगा। मैं उसमें एक आत्मा डालूंगा ताकि वह एक अफवाह सुन ले और अपनी भूमि पर लौट आए, और मैं उसको उसके ही देश में तलवार से घात करूंगा। अध्याय 37 के अंत में देखें, श्लोक 38। श्लोक 37 वास्तव में, तब अश्शूर का राजा सन्हेरीब चला गया और घर लौट आया और नीनवे में रहने लगा। और जब वह निस्रोक के भवन में दंडवत कर रहा आया, तब उसके पुत्र अद्रम्मेलेक और शरीसर ने उसे तलवार से मार डाला। उनके अरारत देश में भाग जाने के बाद उसका पुत्र एश्रहद्दोन उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यह 19 साल बाद है। लेकिन मुझे यह पंक्ति बहुत पसंद है, भगवान की चक्कियां धीरे धीरे पीसती हैं, लेकिन वे बहुत बारीक पीसती हैं। 19 साल लग गए, लेकिन ऐसा हुआ। वह अपनी भूमि पर वापस जाने वाला है। सेना के खत्म होने के तुरंत बाद उसने ऐसा किया। लेकिन फिर 19 साल बाद अपनी ही धरती पर वह तलवार से मारा गया, और उसके मंदिर में अपने भगवान की पूजा करते हुए। हाँ, 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 ठीक है, यशायाह यही कहता है। आथर रबशाके वापस लौट आए। उन्होंने अपना संदेश दिया, प्रतिक्रिया नहीं मिली, इसलिए वह वापस दक्षिण पश्चिम में लाकीश की ओर चला जाता है, जहां असीरियन सेना स्थित है। और पाता है कि अरे आखिरकार मिस्र के राजा ने फैसला किया है कि वह बाहर जा रहा है। खैर सच तो यह है कि वह बाहर आए और वापस चले गए, लेकिन इससे शायद लोगों को उम्मीद जगी। आ ठीक है, आखिरकार वह सारा पैसा जो हमने मिस्र को उनके साथ गठबंधन करने के लिए भेजा था, आखिरकार उसका भुगतान होने जा रहा है। मिस्रवासी बाहर आने वाले हैं और यह ठीक हो जाएगा। यह वह पार्टी हो सकती है जिसके बारे में अध्याय 22 में बात की गई थी। परंतु अश्शूर का राजा हिजकियाह को एक पत्र भेजता है। पद 10, तेरा परमेश्वर जिस पर तू भरोसा रखता है यह वचन देकर तुझे धोखा न देने पाए कि यरूशलेम अश्शूर के राजा के हाथ में न दिया जाएगा। और वह फिर से इसी तर्क से गुजरता है, तुम जानते हो कि मैंने अन्य सभी देवताओं के साथ क्या किया है। आप कैसे सोचते हैं कि आपका भगवान अलग है? तो फिर हिजकिया इस बार और भी बेहतर करता है। वह यहोवा के भवन में गया और वह पत्र यहोवा के सामने फैला दिया। और हिजकियाह ने यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा उस श्लोक में 3 बार, लगभग 20 शब्दों में 3 बार, हे स्वर्ग की सेनाओं के प्रभु, याद रखें जब आप मेजबानों को देखें तो इसे अपने दिमाग में रखें। हम स्वर्गीय यजमानों के बारे में बात कर रहे हैं। हम ईश्वर के बारे में बात कर रहे हैं जिसके पास पूर्ण सार्वभौमिक शक्ति है, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, आकाश के तारे उसके हैं, और वह उस शक्ति को किसी भी स्थिति पर केंद्रित कर सकता है। हे सेनाओं के यहोवा, इसराइल के परमेश्वर जो करूबों के ऊपर विराजमान है। कुछ लोगों ने कहा है, ठीक है, वाचा का संदूक वास्तव में भगवान के सिंहासन की तरह था, और वास्तव में बस इतना ही था। यह सिर्फ एक सिंहासन था। यह नहीं कहता कि वह करूबों पर विराजमान था। इसमें कहा गया है कि वह करूबों के ऊपर सिंहासन पर बैठा था। जब तक आप यशायाह न हो, उसका सिंहासन अदृश्य है। और फिर आप इसे एक बार जरूर देखें, करूबों के ऊपर सिंहासनारूढ़। आप भगवान हैं, पृथ्वी के सभी साम्राज्यों में से केवल आप ही हैं। तूने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई, रचना बहुत महत्वपूर्ण है। हमने भगवान को नहीं बनाया, भगवान ने हमें बनाया। अपना कान झुकाओ और सुनो, अपनी आंखें खोलो और देखो, और सन्हेरीब के सब वचन सुनो जो उसने जीवते परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाने के लिए भेजा है। सचमुच हे यहोवा, अश्शूर के राजाओं ने अपने देश की सब जातियों को उजाड़ दिया है। उन्होंने अपने देवताओं को आग में झोंक दिया है। क्यों? कोई देवता नहीं है। हाँ वह सही है, लेकिन वह देवताओं से नहीं लड़ रहा था। ये मूर्तियां थीं, बेजान मूर्तियां, लेकिन काम तो मर्दों के हाथ का है। मैं हाल ही में कई अलग अलग जगहों पर बोल रहा हूं। मुझे याद नहीं कि मैंने कब किससे क्या कहा, और जो मैं पहले ही कह चुका हूं उसे दोबारा कहने से मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन दोहराव शिक्षा की आत्मा है। हाँ ठीक है, भगवान ने हमें अपनी छवि में बनाया। मूर्ति पूजा तब होती है जब हम ईश्वर को अपनी छवि में बनाते हैं। दैवीय शक्ति को हमारे नियंत्रण में कम करना, हमारे उद्देश्यों के लिए ईश्वर को प्रबंधनीय बनाना। अब मुझे श्लोक 20 पसंद है। मान लीजिए कि आप हिजकियाह थे, आपने अपनी प्रार्थना कर ली है, आपने कहा हाँ यह सही है भगवान, उन्होंने सभी देवताओं को नष्ट कर दिया, लेकिन वे देवता नहीं हैं। आप भगवान हैं, तो आप अपने निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे हैं। आपका निष्कर्ष क्या होगा? भगवान तुम्हें क्यों बचाए? ठीक है, क्योंकि आप बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि तुम बहुत वफादार रहे हो, क्योंकि आप इसके लायक हो। वह क्या बोली? यह हमारे बारे में नहीं है प्रभु, यह तुम्हारे बारे में है। और मुझे लगता है कि उस समय भगवान ने कहा, वाह, किसी को मिल गया है हमारे बारे में भगवान। हालांकि हिजकियाह जो भी करे, हिजकियाह विफल रहा और उसने किया, इस बार उसने इसे सही किया। हे प्रभु, मुझ में अपना कार्य करो, इसलिए नहीं कि मैं इसके लायक हूं, इसलिए नहीं कि मैंने इसे किसी तरह अर्जित किया है, लेकिन ताकि दुनिया को पता चल सके। और आप देखिए, यह अध्याय 2 पर वापस जाता है। सभी राष्ट्र उसके टोरा, उसके निर्देशों को सीखने के लिए यरूशलेम आने वाले हैं। प्रभु के मार्ग पर चलना। यदि यरूशलेम ईश्वर के चेहरे में बदल जाता है, ठीक है, आगे बढ़ाओ। आमोस के पुत्र यशायाह ने हिजकियाह के पास कहला भेजा, इसराइल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है, क्योंकि तूने अश्शूर के राजा सन्हेरीब के विषय में मुझसे प्रार्थना की है, यहोवा ने उसके विषय में यही वचन कहा है, वह आपका तिरस्कार करती है। हे सियोन की कुवारी बेटी, वह तुझे तुच्छ जानती है। वह यरूशलेम की बेटी, तेरी पीठ के पीछे अपना सिर हिलाती है। वहां तस्वीर है। यहां यह राक्षस आदमी आता है जो इस असहाय छोटी लड़की का बलात्कार करने जा रहा है, और कहती है, यह असहाय छोटी लड़की, यह कुंवारी बेटी, वह तुम्हें ठट्ठों में उड़ाती है। तुमने उसका मजाक उड़ाया, भगवान, वह तुम्हारा मजाक उड़ाती है। बहुत खूब, तुमने किसका उपहास और तिरस्कार किया है? आपने किसके खिलाफ आवाज उठाई है? और अपनी आंखें ऊंचाइयों की ओर उठाओ। याद रखें, अध्याय 2 क्या कहता है, ऊंची निगाहें झुक जाएंगी। और यह यहां है, इसराइल के पवित्र के विरुद्ध, जिसे यशायाह ने देखा था, जिसके वस्त्र के आंचल से मंदिर भर गया, ब्रह्मांड में एकमात्र सच्चा पवित्र प्राणी, जो वास्तव में दूसरा है, जिसने अपने आप को ऐसे लोगों को सौंप दिया है जो इसके योग्य नहीं हैं, लेकिन केवल शुद्ध प्रेम के लिए उसने ऐसा किया है। वह वही है जिसका आपने मजाक उड़ाया है। अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। अब यह आकर्षक है, श्लोक 24 और 25। ऐसा लगता है जैसे यशायाह ने अपना होमवर्क कर लिया है, क्योंकि यह भाषा काफी हद तक असीरियन जानवरों से मिलती जुलती है। ये सभी सम्राट, उन्होंने मंदिर की दीवारों पर अपनी उपलब्धियों की रिपोर्ट लगाई और वे यही बातें कहते हैं, मैं अपने अनेक रथों के साथ पर्वतों की ऊंचाइयों तक चला गया हूं, लेबनान के सुदूर इलाकों तक, इसके सबसे ऊंचे देवदारों को काटने के लिए, यह सबसे अच्छा सरू है, इसकी सुदूरतम ऊंचाइयों तक आने के लिए, यह सर्वाधिक फलदायी वन है। मैंने कुएं खोदे और पानी पिया, मैंने अपने पाव के तलुए से मिस्र की जलधाराएं सुखा दी। अब मुझे नहीं पता कि यशायाह ने यहां थोड़ा शोध किया था या नहीं, या क्या यह सिर्फ पवित्र आत्मा है, लेकिन यह दिलचस्प है। यदि रब्बी शेका यहूदा के बारे में जानता है, यशायाह अश्शूर के विषय में जानता है। अब यहां यह आता है, श्लोक 26, क्या तुमने नहीं सुना कि मैंने इसे बहुत पहले ही निर्धारित कर लिया था? मैंने पुराने दिनों से योजना बनाई थी जिसे मैं अब पूरा करूंगा, कि तू गढ़वाले नगरों को खंडहरों के ढेरों में चूर कर दे। श्लोक 28, मैं जानता हूं आप बैठे हैं, और तुम बाहर जा रहे हो और अंदर आ रहे हो, और तुम मुझ पर भड़क रहे हो, क्योंकि तूने मुझ पर क्रोध किया है और तुम्हारी शालीनता मेरे कानों तक पहुंच गई है। मैं तुम्हारी नाक में नक्काशी डाल दूंगा और तुम्हारे मुंह में अपना टुकड़ा डाल दूंगा, और मैं तुम्हें उसी मार्ग से लौटा दूंगा जिससे तुम आए हो। वह निर्वासन की तस्वीर है। अश्शूरियों ने मछली कांटों से लोगों को निर्वासन में खींचने के बारे में डींगे मारी, और बिट्स और लगाम के साथ आप अपना खुद का पाने जा रहे हैं। तो इस कथन के अनुसार सन्हेरीब का पाप क्या है? अहंकार, अभिमान, अहंकार। हाँ हाँ, यहां यशायाह की पुस्तक का एक और रूपांकन है। वह कौन है जो ब्रह्मांड में सर्वोच्च है? यहोवा अकेला है, उसका कोई भी प्राणी नहीं। प्राणी को ऊंचा करो और यहोवा को नीचा करो, और आप एक अर्थहीन ब्रह्मांड के साथ समाप्त हो जाते हैं। हमारा अपने आप में कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल वही जहां 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत का दर्शन है। जीवन निरर्थक है। आप अपना मतलब खुद निकालें, और एक अर्थ उतना ही अच्छा है जितना दूसरा, क्योंकि कोई भगवान नहीं है। तो मैं उस संकेत के बारे में बात करता हूं जो वह वहां देता है, और फिर 33 में वादा, वह इस शहर में नहीं आएगा या वहां तीर नहीं चलाएगा या ढाल लेकर उसके सामने आओ या उसके विरुद्ध घेरा डालो। जिस रास्ते से वह आया था उसी रास्ते से वह लौटेगा। वह इस नगर में नहीं आएगा, यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैं इस नगर को बचाने के लिए थे उसकी रक्षा करूंगा, मेरे और मेरे सेवक दाऊद के लिए। 37:26 पीछे जाए और अध्याय 14 को देखें, श्लोक 24-27, और दोनों की तुलना करें। अध्याय 14 में भगवान अश्शूर के बारे में क्या कहते हैं? मैंने इसकी योजना बना ली है, मैंने इसका प्रस्ताव रखा है। श्लोक 26, यही वह उद्देश्य है जो संपूर्ण विश्व के संबंध में है। हर बार असीरिया सामने आता है। उन्होंने जो हासिल किया है और जो उन्होंने किया है उसके बारे में डींगे हाँकना। भगवान कहते हैं, क्या तुम नहीं समझते? ये मेरी पुरानी योजना का हिस्सा है। आप लोग बस मेरी योजना के अनुरूप हैं। अब मैं इस बारे में पहले भी बात कर चुका हूं और फिर से इस पर बात करूंगा। मुझे आशा है कि आपके पास यह अद्भुत मिश्रण होगा, मानव की स्वतंत्र इच्छा के बीच नहीं, असीरियन कठपुतलियां नहीं हैं, और भगवान बस तार खींच रहा है, और वे वही कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। नहीं, वे जो कर रहे हैं वह अपनी मर्जी से कर रहे हैं, लेकिन उनकी स्वतंत्र इच्छा ईश्वर की योजना के अनुरूप है। अब आप कहें कि आप उन दोनों को एक साथ कैसे रखेंगे? आप मानव मस्तिष्क में नहीं हैं, लेकिन बाइबल ऐसा करती है, और हम इसके किसी भी पक्ष से समझौता नहीं कर सकते। नहीं, भगवान स्वर्ग में बैठकर नहीं कह रहे हैं, हे प्रिय, मुझे आश्चर्य है कि वे आगे क्या करने जा रहे हैं। लेकिन वह कठपुतली स्वामी भी नहीं है। जब वह तार खींचता है तो हमें उछाल कौन देता है? उन दोनों के बीच मिश्रण में कहीं परमेश्वर के उद्देश्य साकार होने जा रहे हैं। लेकिन आपके और मेरे पास अद्भुत विकल्प हैं। हम किस प्रकार उस योजना का हिस्सा बनने जा रहे हैं, और हम इसके अनुरूप कैसे बनेंगे? ठीक है, इसलिए यह इतना दिलचस्प है कि आपको यह लंबा बिल्डअप मिलता है, और फिर थपथपाओ, और प्रभु का दूत बाहर चला गया, और अश्शूरियों की छावनी में 185,000 पुरुषों को मार डाला। और जब लोग भोर को सवेरे उठे, देखो वे सब शव थे। तब अश्शूर का राजा सन्हेरीब चला गया और अपने घर लौट आया। मैं भी होऊंगा। अब दो दिलचस्प बातें और मैं आपको जाने देता हूं। हमारे पास सन्हेरीब का इतिहास है, जहां असीरियन सम्राटों की शास्त्रीय परंपरा में वह अपनी सारी उपलब्धियां बता रहे हैं। वह बताता है कि हिजकिय्याह यहूदा का राजा कैसे था, गठबंधन बनाया था वहां बचे हुए राष्ट्रों के साथ, मोआब, एदोम, पलिश्ती और यहूदा, और इसलिए वह कहता है कि मैं उन्हें सजा देने गया था। मैंने पलिश्तियों पर आक्रमण किया, उन्हें नष्ट कर दिया। मैंने यहूदा से उसके सभी किले छीन लिए। मैंने सभी में से सबसे महान किले लाकीश पर कब्जा कर लिया। और जहां तक हिजकिय्याह का प्रश्न है, मैंने उसे पिंजरे में बंद पक्षी की तरह बंद कर दिया। अब अपने अगले गौरवशाली अभियान पर मैंने पूर्व की ओर जाने का निर्णय लिया। क्या हुआ? आम तौर पर जिसने गठबंधन का आयोजन किया, आप वही होते हैं जिसके पीछे आप होते हैं, और वह धीमी गति से भयानक मौत मरता है। किसी और के लिए एक सबक के रूप में ऐसा मूर्खतापूर्ण विचार किसके पास हो सकता है? जहां तक हिजकिय्याह की बात है, मैंने उसे पिंजरे में बंद पक्षी की तरह बंद कर दिया। आपने यरूशलेम को नष्ट नहीं किया हो? मुझे आश्चर्य है, क्योंकि हम जानते हैं क्यों, लेकिन निश्चित रूप से वह अपने भगवान को यह नहीं बताएगा। दूसरी दिलचस्प बात यह है, जैसा कि मैंने कहा, सन्हेरीब अगले 19 वर्षों तक सिंहासन पर रहा। उन्होंने फिर कभी पश्चिम में प्रचार नहीं किया। याद रखें कि उनका अंतिम लक्ष्य क्या है। उनका अंतिम लक्ष्य मिस्र है। आखिरकार वह यही तो रहा है। खैर, मैं भी नहीं करूंगा। अगर मैंने एक रात पूरी सेना खो दी होती, इस यहोवा प्राणी के साथ खिलवाड़, मैं वहां भी नहीं जाऊंगा। क्या आप भगवान पर भरोसा कर सकते हैं? अरे हां, अरे बाप रे। और इसलिए इन अध्यायों में, सचमुच में, पुस्तक का संपूर्ण प्रवाह इसी बिंदु तक है, अपने चरम पर आ रहा है। सचमुच में 36-37, 38 अध्याय 37 का, यह उस हर चीज का चरमोत्कर्ष है जिसकी ओर हम प्रयास कर रहे हैं। क्या आप यहोवा पर भरोसा कर सकते हैं? हां, आप कर सकना। लेकिन हमें यहां दो और अध्याय मिले हैं, और हम अगले सप्ताह इसी बारे में बात करना चाहते हैं। इन अगले दो अध्यायों में क्या चल रहा है? चलिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, धन्यवाद, आपने साबित कर दिया है कि हम आप पर भरोसा कर सकते हैं। 185,000 शत्रु सैनिकों को मारकर नहीं, परंतु अपनी जान देकर हमारे लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। और हम आपसे कहना चाहेंगे, हमें आप पर भरोसा है। उन सभी समयों के लिए हमें क्षमा करें जब हम वैसा आचरण नहीं करते, जब हम अपनी चिंताओं और भय से घिर जाते हैं, जब हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें खुद को बचाने के लिए काफी मेहनत करनी होगी। हे प्रभु, हम पर दया करो, हमें फिर से याद दिलाएं आप भरोसेमंद हैं, और हमें उस आत्मविश्वास में जीने में मदद करें। आपके नाम पर हम प्रार्थना करते हैं। तथास्तु। यह यशायाह की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर जॉन ओसवाल्ट हैं। यह सत्र संख्या 18 है। यशायाह अध्याय 36 और 37।